बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय यशोदनन्दन व्रज जन रंगन यशोदनन्दन व्रज जन रंगन यशोदनन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण बोलिए कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे राधे जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय राधा वन बिहारी राधा वन बिहारी राधा वन बिहारी राधे राधे जय राधा वन बिहारी राधा वन बिहारी राधा वन बिहारी राधे जय नित्य गौरंग जय नित्य गौरंग जय नित्य गौरंग जय गौर हरि प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री झूलन यात्रा महामहोत्सव की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा। तो आज के इस अत्यंत शुभ अवसर पर झूलन यात्रा का प्रथम दिन है आज, तो इसके अवसर में हम थोड़ा ये वृंदावन लीला क्या है और ये झूलन यात्रा हम क्यों मना रहे हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। उससे प्रथम मैं शुरुआत करूँगा कि हमारा जो ये मनुष्य जीवन है उसका प्रत्येक क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तम च यन्नसौ तस्य ऋते यत् क्षणम नीता उत्तम श्लोक वार्तया। कह रहे हैं कि जैसे एक नया दिन उग जाता है और उसके बाद उसका अस्त हो जाता है, उदय होता है, अस्त होता है, तो हमारे जीवन का एक दिन वो वापस कभी लौटने नहीं वाला है। जैसे आज की तारीख है 30 जुलाई, तो 30 जुलाई आज बीत गई तो पुनः वापस नहीं आएगी। कितना भी हम प्रयास करें, कितना भी संपत्ति के बदले में, हमको वो दिन वापस नहीं आएगा। तो ये मनुष्य जीवन अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम् बहु संभवान्ते। ये मनुष्य जीवन हमको कैसे प्राप्त हुआ है? अनेक अनेक योनियों के में जन्म लेकर सुख दुख भोगने के बाद में मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम् बहु संभवान्ते। बहु मतलब ये बहुत बहुत, कितने 84 लक्ष योनियाँ, उसमें जाकर मनुष्य जन्म मिलता है। और लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम् बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अपि अनित्यम अपीह धीरः। तो ऐसा जन्म प्राप्त करके हमको क्या करना चाहिए, उसके बारे में कह रहे हैं। ये भगवान स्वयं उपदेश कर रहे हैं, भगवान कृष्ण। तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत। तूर्णम मतलब तुरंत तुरंत हमको क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। किसके लिए प्रयास करना चाहिए, कब तक प्रयास करना चाहिए? आखिरी सांस तक। किस लिए प्रयास करना चाहिए? निःश्रेयसाय विषया खलु सर्वतः स्यात्। निःश्रेयस मतलब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि विषय विषय सर्वतः स्यात्, विषय तो सब जगह पे उपलब्ध है, बाकी योनियों में भी उपलब्ध है विषय। मनुष्य जीवन की स्पेशल विशेषता यह है कि उसमें आप भक्ति कर सकते हो। और हमारे सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं मनुष्य जीवन में। जैसे हम किसी विशेष जगह पे जाते हैं तो वहाँ का स्पेशल आइटम हम खरीदते हैं, बराबर। जैसे आप आगरा चले गए तो कौन सा खाने का आइटम वहाँ से खरीदोगे? पेठा खरीदेंगे। वहाँ जाके वड़ा पाव नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो तो इधर किसी किसी भी टपरी पर मिल जाता है। तो हम गए थे जब तभी, हाँ, एक बहुत सालों पहले, तो पेठे की 100 वैरायटी है उधर, अलग अलग प्रकार के पेठे। हमको पता ही नहीं था, हमको इधर रह के पता था कि केवल एक ऐसा पेठा रहता है जो पत्थर जैसा दिखता है। तो वहाँ पे अलग अलग आकार में, अलग अलग रंग में पेठे उपलब्ध हैं। अगर आप मैसूर जाओगे तो क्या खरीदोगे? मैसूर पाक खरीदेंगे, क्योंकि उधर का वो स्पेशल है, विशेष है, इसलिए वहाँ पे वो खरीदेंगे आप। और बंगाल में जाओगे तो क्या खरीदोगे? रसगुल्ला, रसमलाई। हाँ, तो वो तो आजकल इधर भी बनती है, वहाँ जाके आप फिर रस कदम, खीर कदम, जो और जगह पे उपलब्ध नहीं है, आपको बता के रखता हूँ ताकि आप जब पेश आएंगे पहले भगवान को अर्पण करके खाना। अगर राजस्थान जाएंगे तो क्या खाएंगे? गजक खाएंगे, चूरमा का लड्डू खाएंगे। कोल्हापुर जाएंगे तो क्या खाएंगे? ये मत कहना चप्पल खाएंगे करें, क्योंकि उधर का चप्पल भी फेमस है। उधर की मिसल में मिलती है। नागपुर जाएंगे तो चिवड़ा मिलता है, वो वहाँ का फेमस है। सातारा जाएंगे तो क्या खाएंगे? है कोई सातारा से इधर? हाँ, कंदी पेड़ा, कंदी पेड़ा वहाँ का फेमस है। तो वैसे ही ये मनुष्य जन्म में हम अगर आते हैं तो यहाँ पे विशेष है भगवान की भक्ति। तो नहीं तो लोग कहेंगे, अरे आगरा गए और पेटा नहीं गया, पूरा आपका टूर बर्बाद हो गया करें। तो वैसे ही हाँ, भगवान कहेंगे, अरे मनुष्य जन्म प्राप्त किया और भक्ति नहीं किया, सबसे बड़ा मधुर जो चीज़ मिलता है वो छोड़ दिया आपने। बाकी सब चीज़ों तो बाकी सब जगह में मिलती हैं। तो इसलिए पहली चीज़ हमको जाननी चाहिए कि यहाँ पे भक्ति करनी चाहिए। बाकी सब चीज़ मतलब अनेक प्रकार के इंद्रिय तर्पण है, जो जो विषय सुख है, जो अनेक अनेक योनियों में भी उपलब्ध है, पशु योनियों में भी उपलब्ध है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। कोई कहेगा कि अरे नहीं, लेकिन हाँ, हमको समाज सेवा भी करनी चाहिए मनुष्य जन्म पाकर। तो समाज सेवा भी आप देखेंगे तो वो भी बाकी इसमें भी उपलब्ध है, बाकी जन्मों में भी उपलब्ध है। जैसे आप कोई कौवा, एक बार हमने देखा एक बार हमने देखा कि एक बार एक कोई चूहा मरा था, तो वो कौवा आकर जोर जोर से काओ 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 करके अपने सारे ज्ञाति बांधवों को बुलाने लगा। तो उसका कहने का मतलब है कि अरे फीस्ट है आ जाओ, सब लोग आ जाओ, चूहा खाने के लिए आ जाओ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि, और अगर आप देखें दूसरों की मदद करना, वो भी बाकी योनियों में उपलब्ध है। और फिर से एक कौवे का भी उदाहरण देता हूँ मैं, कि एक हमने देखा कि एक दो कौवे बैठे थे, एक कौवा अपनी गर्दन टेढ़ी करके दूसरे कौवे के सामने रख रहा था, ताकि क्या वो दूसरा कौवा उसको चोंच से ऐसा थोड़ा सा खुजलाए। तो ये प्रकार की सेवा तो बाकी योनियों में भी उपलब्ध है। केवल भगवान की सेवा जो है वो मनुष्य जन्म में हम कर सकते हैं। बाकी सब भी करना चाहिए, भाई आहार तो लेना पड़ता है, वो भी लेना पड़ेगा, तो लेकिन उसको शुद्धिकरण करके लेना पड़ेगा। और बाकी समाज में हम रह रहे थे उसके प्रति भी उत्तरदायित्व है, वो भी निभाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो विशेष चीज़ जो भक्ति है उसके प्रति हमको सतर्क रहना पड़ेगा, कि ऐसा ना हो जाए कि बात बात में पूरी जिंदगी निकल जाए और केवल भक्ति रह जाए। तो हमारी विविध प्रकार की चेतनाएं होती हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। सबसे न्यूनतम चेतना होती है उसको कहते हैं आवृत्त चेतना। आवृत्त चेतना का अर्थ है कि वहां पे हमारी चेतना का केवल एक ही लक्षण है कि कैसे विविध प्रकार की जो इंद्रियों का ज्ञान है वो प्राप्त होता है। जैसे वृक्ष की योनि है, उसकी चेतना को कहा गया आवृत्त चेतना। आवृत्त चेतना मतलब उनको ज्ञान नहीं रहता, मन में थोड़ी सी भावनाएं वो समझ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनके केवल इंद्रिय कार्यरत रहते हैं, लेकिन मन और बुद्धि कार्यरत नहीं है, कार्यान्वित नहीं है। तो उसके ऊपर का स्तर है आवृत्त चेतना। आवृत्त आवरण आपने सुना होगा, आवरण मतलब हाँ जिसको किसी ने ढका हुआ है तो अंदर क्या है पता नहीं चल रहा है, तो वैसी चेतना वृक्षों की होती है, वनस्पतियों की। उसके ऊपर की चेतना होती है उसको कहते हैं संकुचित चेतना। आप कली का उदाहरण दे सकते हैं, कली होती है सबसे पहले आवृत्त होती है, उसके ऊपर एक हरा आवरण होता है, उसको क्या कहते हैं जो भी है फूलों के विविध भाग होते हैं, तो उसका हरे आवरण से ढकी हुई रहती है। हाँ, उसके बाद हल्की सी कली दिखना चालू होती है, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं संकुचित। हाँ, अभी तक प्रसरण नहीं हुई है, तो वो है पशुओं की चेतना जो है संकुचित चेतना, जिसमें उनकी इंद्रिया और मन कार्यान्वित होता है लेकिन बुद्धि उतनी कार्यान्वित नहीं होती। मन कार्यान्वित होता है मतलब उनको भाव भावनाएं समझते हैं, पशु भी समझते हैं, वो भी कभी कभी अकेला महसूस करते हैं पशु उनको भी कंपनी चाहिए किसी की। पशु को भी अनेक प्रकार के सुख दुख उसकी भावना समझती है, लेकिन विचार नहीं कर पाते वो, दुख से हम कैसे दूर हों ऐसा विचार नहीं कर पाते। तो एक स्टोरी बताते हैं कि एक एक पंडित एक खेत 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 में जाता है, तो देखता है उधर की एक बैल को, चक्री चक्री का जो बैल है जो तेल निचोड़ने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है, और उसका किसान जो है वो दूर कहीं जाकर काम कर रहा है उसका मालिक। तो वो पंडित पूछता है किसान को, अरे तुम तो बैल को इधर काम पे लगा के खुद किधर चले गए, तुमको कैसे पता चलेगा कि बैल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कहता है कि मैंने क्या किया है, बैल के गले में घंटा बांध दिया है, तो जैसे वो चलेगा मुझे घंटा सुनाई देगा, और जैसे रुकेगा मुझे पता चलेगा कि इसने काम करना बंद कर दिया, तो मैं अपने काम में जो व्यस्त हूँ उसमें से बाहर निकल के मैं उसको वापस काम पे लगाऊंगा। तो पंडित कहता है, तार्किक कहता है उसको कि अरे लेकिन तुमको कैसे पता कि वो जगह पे बैठ के ऐसा ऐसा नहीं कर रहा है काम बचाने के लिए जगह पे बैठ के ऐसा ऐसा नहीं कर रहा है, तुमको कैसे पता? तो किसान कहता है, क्योंकि मुझे मालूम है वो बैल है, तुम्हारी तरह पंडित नहीं है इतना वो सोच नहीं पाता कि अपने कष्टों से हमको कैसे मुक्त होना है, वो ये सोच नहीं पाता। लेकिन मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें हम सोच सकते हैं कि हम कैसे, हम पहले तो इतना मालूम होना चाहिए कि हम दुख झेल रहे हैं। बहुत लोगों तो इतना मालूम, इतना भी मालूम नहीं कि हम दुख दुख में हैं। जैसे कोई एक बहुत ज़्यादा पिया हुआ व्यक्ति है, उसको चोट लगती है, वो गटर में जाके गिरता है, उसको कोई पूछे कैसे है, हाँ अच्छा हूँ बोलेगा वो, थोड़ी बोलेगा कि दुखी हूँ करके। थोड़ी उतरेगी तो समझ में आएगा कि अरे किधर किधर चोट लगी है, लेकिन वापस दूसरे शाम को पूरा पी के वापस नशे में हाँ दुख झेलता रहेगा वो। हाँ तो जो विवेक है, जो जब वो जब जागरूक होता है कि अरे मैं दुखी हूँ, मुझे कुछ उपाय करना चाहिए, उसको कहते हैं मुकुलित चेतना। जो मनुष्य जन्म में पहला उसका लाभ होता है मुकुलित चेतना का। सो वो जब चेतना और विकसित होकर हाँ वो देखना चालू करता है कि मैं दुख भोग रहा हूँ। हाँ जो अभी मुझे कल ही पार्थ सखा प्रभु ने एक बताया, कह रहे हैं कि संसार में सुख और दर्पण में मुख दिखता है लेकिन होता नहीं है। तो ये पार्थ सखा प्रभु के अपने विशेष पार्थ पार्थ हुआ चो। तो संसार में सुख और दर्पण में मुख दिखता है लेकिन होता नहीं है। हाँ तो ये अगर हम जानते हैं तो और थोड़ा सा हम लॉजिक लगाएं, तर्क लगाएं, हाँ कुतर्क नहीं सुतर्क। तो अगर यहाँ पे नहीं है तो कहीं तो होना चाहिए, बराबर ना। जैसे मान लो आप किसी दुकानदार के पास जाते हो और वो आपकी नोट देखता है और बोलता है कि अरे ये नोट तो नकली है, इसका मतलब आपको क्या मालूम, दूसरा चीज़ क्या मालूम पड़ता है कि असली नोट है, इसलिए वो बता पा रहा है कि, और उसको उसकी पहचान है इसलिए वो बता पा रहा है कि नकली है। बिना असली नोट के आप कैसे बता पाओगे कि ये नकली है करके। तो जब भी हम बोलते हैं कि ये संसार का सुख जो है वह भ्रामक है, तो वो किसका भ्रम है, किसी चीज़ का तो भ्रम होना चाहिए। तो वो जो चीज़ है वो कहाँ उपलब्ध है वो पूछना, ये विकसित चेतना का लक्षण है। तो हमने क्या क्या देखा, आवृत्त चेतना, मुकुलित, उससे पहले संकुचित चेतना, फिर मुकुलित चेतना, फिर विकसित चेतना, कि असली सुख कहाँ पे है। ये खोज में जब वो भगवान की खोज में लगता है तो उसको विकसित चेतना कहते हैं। और भगवान के प्रति अपना संबंध पूर्णतः प्रस्थापित करके भक्ति में लग जाता है तो उसको बोलते हैं पूर्ण विकसित चेतना। तो हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मुकुलित से पूर्ण विकसित। हाँ मुकुलित जब कली है तब सुगंध नहीं छोड़ती, थोड़ी विकसित हो जाती है तो और सुगंध आता है, और पूर्ण विकसित होती है तो पूर्णतः उसका सुगंध फैल जाता है सब जगह पर। तो ये स्तर पे हम असल में भगवान के झूलन लीला को समझ सकते हैं, पूर्ण विकसित स्तर पर। हाँ अभी हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं। कोई हमको बोलता है गन्ने का जूस हमने कभी पिया नहीं है और वो बताता है वो कैसा है, हाँ तो केवल कितना भी वर्णन करें हम केवल समझ सकते हैं कि हाँ उसका चेहरा देख के तो लग रहा है बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमने कभी उसका स्वाद नहीं ग्रहण किया है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि मान लो आप शहद की बोतल है, वो बाहर से हम देख रहे हैं शायद से थोड़ा सा सुगंध भी आए और अच्छा भी लगे, लेकिन जब तक वो बोतल खोलकर अंदर का जो शहद है मधु है वो खुद आस्वाद नहीं करेंगे, तब तक हम असल में नहीं पता कर पाएंगे कि ये शहद होता क्या है, ये शहद चीज़ क्या होती है, ये मधु क्या होती है। चाहे कितना भी हम उसका डिटेल ऊपर बोतल में के ऊपर लिखा हो कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, क्या क्या है उसके अंदर, लेकिन जब तक हम आचार्यों का मार्गों का अनुसरण करके जब भी अपनी चेतना को विकसित नहीं करेंगे तब तक हमको असल में पता नहीं चल सकता कि ये भगवान की लीलाएं क्या हैं। लेकिन फिर भी हमको, फिर आप पूछेंगे फिर हम क्यों कर रहे हैं ये, क्यों हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, अगर हमको अभी पता नहीं चलने का चांस नहीं है तो क्यों कर रहे हैं हम सेवा। तो इसके लिए मैं एक श्यामानंद प्रभु एक उदाहरण देते हैं, तो वो उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो उसमें वो कहते हैं कि जैसे कोई एक पुराने जमाने में कन्याओं की शादी जल्दी हुआ करती थी, कन्याओं का विवाह जल्दी हुआ करता था, तो उसका विवाह होने के बाद उसको पता भी नहीं था कि ये पति क्या होता है, उसको लगता है अरे हाँ कोई तो है जिसके साथ मुझे बिठा दिया। और बाद में उसके पश्चात भी वो अपने मायके ही रहती है, अपने माता पिता के ही घर रहती है, और हर दिवाली दशहरा को उसके पति को बुलाया जाता है घर पे। और फिर उसके पत्नी जो कन्या है उसके माता पिता कहते हैं कि अरे वो जो उधर बैठा है ना उसको जाके वो गुलाब जामुन दे के आओ। तो वो सोचती है कि अरे इसको क्यों मैं खिलाऊं गुलाब जामुन, ये कौन आ गया ऐसा। लेकिन फिर भी वो माता पिता का सुनती है और जाके उसको गुलाब जामुन देती है। उसको पता नहीं क्या कर रही है वो, क्या इत्यादि इत्यादि। लेकिन जैसे ही वो बड़ी होने लगती है और एक वयोमान के अनुसार एक एक उम्र की हो जाती है, तो अचानक वही चीज़ वो कर रही है। हाँ दिवाली पे पति आता है घर पे और उसको वो अनेक अनेक मिष्टान्न खिला रही हैं, लेकिन पहली बार वो शर्मा जाती है। हाँ ये क्यों होता है? क्योंकि उसको समझ में आने लगता है कि ये पति क्या होता है, और उसको समझ में आने लगता है कि मेरा संबंध क्या है उसके साथ। तो बिल्कुल उसी प्रकार हम भगवान के सामने दिया घुमा रहे हैं, भगवान को झूला कर रहे हैं, तो हमको शायद से अभी समझ में नहीं आ रहा ये क्यों कर रहे हैं हम। केवल गुरु कह रहे हैं, माता पिता कह रहे हैं बड़े वैष्णव कह रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। हाँ ठीक, उसको खाना खिलाओ ठीक है, हाँ उसको रस्सी खींचो, हाँ ठीक है रस्सी खींचते हैं। लेकिन जब हम अपनी चेतना विकसित हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, उसके पश्चात पहली बार हमको समझ में आएगा किसी दिन धीरे धीरे कि अरे सच में ये कृष्ण कौन है और हमारे उनके साथ क्या संबंध है। तो इसलिए तब तक वो कन्या को क्या करना चाहिए कि माता पिता का सुनना चाहिए और पति की सेवा जारी रखनी चाहिए। और हाँ अभी तो ओकेजनली मतलब नैमित्तिक रूप से होती थी, लेकिन बाद में नित्य रूप में होती है वो सेवा। तो वैसे ही अब हमारी शायद से बीच बीच में अंतर के बाद एक उत्सव, फिर कभी जप करेंगे, फिर बाद में कभी आरती करेंगे, लेकिन उसके बीच में थोड़ा अंतर अंतर गिरता रहता है। लेकिन जैसे विकसित होता है, तो जैसे कोई कन्या जब उसकी जब जब वो अपने पति के घर चली जाती है तो नित्य सेवा में संलग्न होती है। तो बिल्कुल उसी प्रकार हमको अपनी चेतना को शुद्ध करना होगा। तो इसीलिए मैं एक पढ़ रहा था, उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मुनि अपनी पत्नी मैत्रेयी को कहते हैं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः स्मर्तव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः मैत्रेयी। तो अपनी पत्नी को उपदेश कर रहे हैं, आत्मा वा अरे मंतव्या, अरे मतलब पत्नी को कह रहे हैं कि आपको केवल आत्मा मतलब कृष्ण के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं अहम आत्मा गुड़ाकेशः। तो भगवान कृष्ण को ही हम द्रष्टव्या, उनको ही हमको देखना चाहिए। हाँ स्मर्तव्या मंतव्या निदिध्यासितव्या श्रोतव्या, उसके भगवान के बारे में ही हमको सोचना चाहिए और उनके बारे में ही हमको मनन करते रहना चाहिए, पुनः पुनः अभ्यास करना चाहिए। तो ये जो तभी जाके हमारा मन मन जो है वो शुद्ध हो जाएगा और जो हमारा असल में जो ध्येय है उसकी प्राप्ति हम कर पाएंगे। जैसे कोई हम कोई जितना मुश्किल चीज़ है उसके उसके प्रति ज़्यादा अभ्यास लगता है प्राप्त करने के लिए। कोई मुश्किल चीज़ है जैसे एक स्कूल में मैं गया था, तो वहाँ पे वो मुझे पूछ रहे थे, उनको पता चला कि हाँ मैंने IIT से शिक्षण लिया है, तो मुझे पूछ रहे थे मेरा बेटा भी IIT करना चाहता है, तो उसके लिए कौन से पुस्तकों का वापर करना चाहिए। तो मैं उसके बताने लगा ये पुस्तकें का पुस्तकों का उपयोग करो। लेकिन बाद में मुझे शंका आ गई कि मैंने पूछा आपका बेटा कौन से कितने कौन सी कक्षा में है, तो कहते दूसरी कक्षा में है तो मैंने कहा उनको कि आप उसके यहाँ उसको थोड़ा जीने दीजिए 10वीं तक, बाद में आप उसको बताइए क्या करना है। और उसको उसको खुद आप किसी को स्पून फीड नहीं कर सकते। हाँ उसमें उसके ही हृदय में वो लालसा उत्पन्न होनी चाहिए और वो जब भी तीव्र बनेगी तो खुद ही वो सब चीज़ करेगा, आपको उसको जबरदस्ती हाँ पिलाना नहीं पड़ेगा। मराठी में एक कहावत है, मारून मुटकुन शास्त्री बुआ, मतलब मार मार के उसको शास्त्री बनाना है। तो वैसा काम नहीं होता। तो भक्ति में भगवान भी हमको क्या करते हैं, अनेक अनेक अवसर देते हैं कि खुद हमारी लालसा जागृत हो जाए। कोई फोर्स नहीं करते हैं। अर्जुन को भी भगवान ने फोर्स नहीं किया कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो करके। विमृशे तद अशेषेण यथेचसी तथा करु कहते हैं। तो ये जो भक्ति का भाव जो है वो स्वयं जागृत होना चाहिए, और उसके लिए मदद जरूर करेंगे गुरु गुरुवर्ग और वरिष्ठ वैष्णव जो हैं। लेकिन वो भाव जागृत करना ये हर एक की निजी जिम्मेदारी है। तो बहुत लोग भगवान की जो अंतरंग लीला है वो तुरंत जानना चाहते हैं। जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं कि एक बार वो एक व्यक्ति से मिले जिन्होंने पीएचडी किया हुआ था, जीव गोस्वामी के साहित्य के ऊपर पीएचडी किया हुआ था। तो वो व्यक्ति से मिलने जब गए थे तो वो व्यक्ति शराब पी रहा था, और वो महाराज जी से कह रहा था कि अरे आप ये कृष्ण की पूजा क्यों करते हो, कृष्ण की सेवा क्यों करते हो, वो तो ऐसे ही गोपियों के साथ नृत्य करते हैं इत्यादि इत्यादि। तो महाराज जी ने उनको कहा कि सर आपने पीएचडी किया लेकिन केजी पास नहीं किया, किंडरगार्टन पास नहीं किया। हाँ, किंडरगार्टन क्या है, पहला सबसे बेसिक चीज़ जानना कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और भगवान का अंश हूँ। तो जब तक हम ये नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ और भगवान का अंश हूँ, तब तक हम भगवान को कैसे जान सकते हैं। तो उस अवस्था में अगर हम भगवान को जानने की कोशिश करेंगे या उनकी लीलाओं को जानने का प्रयास करेंगे तो अत्यंत विपरीत उसका परिणाम होगा। जैसे जैसे मान लो आप, हमको गुलाब की सुगंध अगर लेनी है तो गुलाब के बगीचे में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम शौचालय में बैठकर सोचेंगे कि मुझे गुलाब की सुगंध कैसी है वो, हाँ गुलाब वो मैं जानना चाहता हूँ, तो एकदम भयंकर दुर्गंध से हमारा नाक भर जाएगा और हम सोचेंगे क्या यही गुलाब की खुशबू है। तो बिल्कुल उसी प्रकार हमको भी हमारी चेतना को गुलाब के बगीचे में लेके जाना पड़ेगा। तो पहले तो हमको तत्व को समझना होगा, उसके पश्चात हम लीला का आस्वादन कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं जो कह रहे हैं उनकी लीलाओं के बारे में कि उनकी लीलाओं की तीन जो खासियतें हैं वो हमको समझना चाहिए। एक है दिव्यता, शुद्धता और कृपामयता। तो भगवान की लीलाएं दिव्य हैं। तो भगवान स्वयं कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। तो भगवान का जन्म जो है वो साधारण व्यक्ति की तरह नहीं हुआ है। भगवान प्रथम नंद महाराज के हृदय में आते हैं, आज एकादशी है तो एकादशी व्रत 2 साल के लिए करते हैं यशोदा और नंद महाराज। ये भौम वृंदावन की लीला है, वैसे तो वो शाश्वत रूप में भगवान के माता पिता हैं, लेकिन एकादशी द्वादशी का व्रत 2 साल के लिए करते हैं नंद यशोदा, और उसके पश्चात एक दिन नंद महाराज के हृदय में स्वयं भगवान कृष्ण प्रकाशित हो जाते हैं और उनके हृदय से यशोदा देवी के हृदय में स्थानांतरित होते हैं, और इस प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्म होता है। तो हम जानते हैं कि सब जो कुछ भी भगवान करते हैं सब कुछ दिव्य है। तो ये प्रथम हमको समझना होगा कि ये जो संसार के जो 3 गुण हैं उनके अतीत है भगवान की सारी लीलाएँ। मध्वाचार्य कहते हैं कि भगवान के नाम रूप गुण लीला जो कुछ भी भगवान करते हैं सब कुछ, सबको भगवान के जो वैशिष्ट्य है वो उनको भी लागू है। भगवान के नाम को, गुण को, लीला को, सबको वही वैशिष्ट्य उनको भी लागू है। और उसके पश्चात हमें जानना चाहिए कि भगवान की लीला इतनी शुद्ध है कि वो सुनने वालों को भी शुद्ध करती है, और वो इतनी शुद्ध है कि जो आत्माराम है, जो खुद को जान चुके हैं, स्वयं के तत्व को जान चुके हैं, वैसे व्यक्तियों को भी वो आकर्षित करते हैं। तो जनक महाराज ने एक बार परीक्षा की थी सुखदेव गोस्वामी की, कि उनके जिह्वा के ऊपर खड़ी शक्कर रख दिया था, और बाद में पता चला वो खड़ी शक्कर गीला भी नहीं हुआ। हाँ, तो इतने विरक्त थे वो सारे प्रकारों के विषय से, इतने विरक्त थे कि जब भी वो नग्न अवस्था में ऐसे घूम रहे थे, तो जो कन्याएं स्नान कर रही थी उनको भी ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ हाँ अयोग्य अनुचित हो रहा है करके। तो उन्होंने भी कष्ट नहीं लिया अपने को संवारने का। हाँ, जैसे कोई पेड़ को देख के किसी को कुछ आशंका नहीं आती, वैसे सुखदेव गोस्वामी को देखकर उनको कोई आशंका ही नहीं आई, क्योंकि वो हाँ स्त्री और पुरुष ये जो बाहर के शरीर के भीतर जाके देख रहे थे। तो वैसे सुखदेव गोस्वामी भी भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ लीलाओं का वर्णन करते हैं। और तीसरी हमको चीज़ देखनी चाहिए, कृपामयता। तो ये भगवान ये विविध प्रकार की लीला क्यों करते हैं? तो भागवत में कहते हैं, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषीं तनुम आश्रिता भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। जैसे कोई एक किसी की याददाश्त खो गई है, तो उसको वापस याद दिलाने के लिए क्या किया जाता है? शॉक ट्रीटमेंट दी जाती है, लेकिन सरल उपाय और जो अहिंसक उपाय में उसको दिखाया जाता है कि वो उसकी जो पसंदीदार चीज़ उसके सामने बार बार लाई जाती है। जैसे जैसे उसकी माँ उसको गाजर का हलवा बना के देगी और बोलेगी कि अरे बेटा तुमको याद है तुमको गाजर का हलवा कितना पसंद था। हाँ, उसकी जो जो भी है फेवरेट मूवी थिएटर है वहाँ लेके जाएंगे उसको, कहेंगे अरे याद है हाँ स्कूल को बंक करके तुम इधर ही पिक्चर देखने आता था। तो इस प्रकार धीरे धीरे उसको सारी चीज़ें याद आती है। तो बिल्कुल उसी प्रकार हाँ ये जो भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, हमको ये याद दिलाने के लिए कि हमारा असली स्थान किधर है, हमको अपने स्वप्न से जागृत करने के लिए भगवान ये सारी लीला करते हैं। फिर हमको ये अनुभव एक प्रकार से होता है कि अरे हाँ यही तो मेरा असली स्वरूप है, यही तो मेरा असली संबंध है भगवान के साथ, कि भगवान की विविध लीलाओं में संलग्न होना यही तो मेरा असली कर्तव्य है, हरि नाम संकीर्तन यही चीज़ मुझे करनी चाहिए, यही चीज़ मुझे देखनी चाहिए। आत्मा वारे द्रष्टव्या श्रोतव्या कीर्तितव्या निदिध्यासितव्या मंतव्या। सो ये चीज़ हमको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो अभी हम भगवान जैसे शुद्ध हैं, वैसे भगवान के सारे पार्षद भी अत्यंत शुद्ध हैं। जैसे कहते हैं कि आप अग्नि, अगर अग्नि के पास कौन जा सकता है? केवल अग्नि ही जा सकता है, और कोई दूसरा जाएगा तो जल जाएगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार भगवान की सेवा कौन कर सकता है? जो भगवान जितना ही पवित्र है वही भगवान की सेवा कर सकता है। तो ऐसे भगवान के सारे पार्षदों में कहा जाता है कि ब्रजवासी जो हैं वो सबसे श्रेष्ठ और प्रियतम हैं, क्योंकि उनकी स्वाभाविक प्रीति है भगवान कृष्ण के प्रति, और केवला प्रीति है। दो प्रकार की प्रीति होती हैं, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा और केवला प्रीति। तो ये केवला प्रीति व्रजवासियों की है, और उन व्रजवासियों में भगवान कृष्ण स्वयं घोषित करते हैं कि गोपियाँ और राधा रानी उनकी सबसे प्रियतम है। व्रजवासी जत जन माता पिता बंधुगण सही है मोर प्राण सम, तार मध्य गोपीगण साक्षात मोर जीवन, तुम्ही मोर जीवन एर जीवन। ये भगवान कृष्ण स्वयं घोषित करते हैं कि और कि ये जो व्रजवासी है मेरी माता मेरे पिता मेरे बंधुगण ये सारे मेरे प्राण के सम है। जैसे विष्णु भी कहते हैं दुर्वास मुनि को, साधवो हृदयम मह्यम, साधु नाम हृदयम तो हम, तो वैसे कहते हैं कि ये सब सारे मेरे प्राण के सम है। और उसमें भी गोपियाँ कौन है? साक्षात मोर जीवन है, ये साक्षात मेरे प्राण के भी प्राण है, मेरा सर्वस्व है। और आप कौन है? राधिका जी को कह रहे हैं कि आप मेरे जीवन के भी जीवन हो, मतलब प्राण के भी प्राण हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बृहद भागवतामृत में एक श्लोक आता है जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं 60 सहस्त्र वर्षों के लिए गोपियों को समझने की, उनके चरण के धूलि को समझने की कोशिश कर रहा हूँ करके। तो उनके जो पुत्र हैं भृगु, वो पूछते हैं कि अरे इतने सारे भक्त हैं सब जगह पर, उनको छोड़कर आप ये स्त्रियों के चरणों की धूल को पाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि आप इनको साधारण मत समझना, हर गोपी जो है वो लक्ष्मी से भी बढ़कर हैं और मुझसे भी बढ़कर हैं और शिवजी से भी बढ़कर हैं, ऐसा भृगु मुनि को समझाते हैं। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उनके जीवन का और क्यों लक्ष्य नहीं है गोपियों के, उनके जीवन का लक्ष्य केवल है कि भगवान को संतुष्ट करना। कृष्ण सुख तात्पर्य यही तार चिन्ह कि कैसे भगवान संतुष्ट हो, और खुद के काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम उज्ज्वल निर्मल शुद्ध ये छे दग्ध हेम। तो एक तपते हुए सुवर्णी की तरह उनका प्रेम जो है वह शुद्ध है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अतएव काम प्रेम में बहुत अंतर, काम और प्रेम में बहुत अंतर है। काम किसकी तरह है, मतलब खुद के इंद्रियों की तृप्ति करने की कोशिश, उसको बोलते हैं काम। तो काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर, तो अंधकार और सूर्य में फर्क समझाने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल उसी प्रकार काम और प्रेम में अंतर सहज सिद्ध है। तो ऐसा कहते हैं कि वो जो गोपियां जो हैं वो उपपति के रूप में कृष्ण की सेवा करती हैं। तो ये उपपति भाव क्यों? क्योंकि ये भौतिक जगत में तो उपपति भाव सबसे गिरा हुआ समझा जाता है और सबसे खतरनाक पाप है वो, और वही अत्यंत शुद्ध रूप में आध्यात्मिक जगत में उपस्थित है। क्योंकि ये उपपति भाव जो है वो उनकी तीव्रता बढ़ाता है कृष्ण के लिए। जैसे कोई, ये सब योग माया का क्या है, योजना है आध्यात्मिक जगत में। जैसे वो गोपियों के ससुराल वाले जब भी उनको रोकते हैं कृष्ण की तरफ जाने के लिए, तो उसका उसकी तुलना की है कि कोई बाण जो है उसका लक्ष्य है कृष्ण, और वो बाण को प्रत्यंचा को लगाकर जितना पीछे खींचेंगे 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 उतना, और जब भी छोड़ेंगे तो उतना तेज़ी से वो लक्ष्य की ओर भागेगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार जो गोपियां हैं उनको एक वियोगिनी शक्ति होती है, तो उसके प्रभाव से अनेक उनके जो तथाकथित पति और सास इत्यादि उनको पीछे खींचने का कोशिश प्रयास करती हैं। तो जितना पीछे 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 खींचते हैं और जब भी छोड़ते हैं तो एकदम द्रुत गति से वो कृष्ण की सेवा में उपस्थित हो जाती हैं। तो ये जो तथाकथित पति जो हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये जो गोपियों की छाया को भी वो स्पर्श नहीं करते, ये जो तथाकथित पति जो हैं वो गोपियों का को तो सवाल ही नहीं है, गोपियों की जो छाया है प्रतिरूप जो गोपियों का है उसको भी वो स्पर्श नहीं करते, तो इतनी वो शुद्ध है। और भगवान का एक क्षण का सरदर्द दूर करने के लिए वो नरक जाने के लिए भी तैयार हैं। तो ये है उनके उनकी थोड़ी सी एक क्या बोलते हैं, महिमा समुद्र का एक कण हम चर्चा कर रहे हैं। तो और उसमें तो राधा रानी तो सबसे सब पावित्र की स्रोत है। तो कहते हैं कि यहार सौभाग्य आदि गुण वांछे सत्यभामा, जिनका सौभाग्य का गुण सत्यभामा स्वयं आकांक्षा करती हैं। यार ठाई कला विलास सिखे व्रज रामा, जिनके ठाई उनके पास से ही सारी गोपियां कला और विलास सीखती हैं। यार सौंदर्य आदि गुण वांछे लक्ष्मी पार्वती, लक्ष्मी और पार्वती जो हैं वो राधा रानी की सौंदर्यता का के लिए प्रार्थना करती हैं। और यार पतिव्रता गुण वांछे अरुंधति, अरुंधति तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं उनकी पातिव्रत्य के लिए, लेकिन वो भी चाहते हैं कि राधा रानी के चरणों का एक कण मुझे, धूलि का एक कण मुझे मिल जाए तो हाँ मेरी पवित्रता बढ़ेगी। तो इस प्रकार हम समझे हैं कि कैसे, ये थोड़ा तत्व के बारे में हमने सुना, अभी हम झूलन लीला के बारे में दस मिनट सुनेंगे। तो एक बार तो ये आषाढ़ का जो मास होता है उसमें सारी गोपियाँ अपने ससुराल में रहती हैं जो है यावट में। आप में से कितने जन वृंदावन गए हैं? ज़्यादा करके गए हैं। तो वृंदावन में जो राधा रानी का मायका है वो है बरसाना, और जो राधा रानी का ससुराल है वो है यावट। तो वो यावट से बरसाना हर श्रावण में सारी गोपियाँ आती हैं एक महीने के लिए अपने मायके आती हैं। तो आषाढ़ से ही उनके हृदय में एक उत्कंठा जागृत होने लगती है कि कभी मैं घर जाऊँ, कभी मैं घर जाऊँ। क्योंकि घर जाने के बाद क्या होगा, वो स्वच्छंद रूप से भगवान कृष्ण को मिल सकते हैं, स्वच्छंद रूप में उनकी सेवा कर सकते हैं, स्वच्छंद रूप में उनके साथ झूला झूल सकते हैं, ये उनकी आकांक्षा है। तो उत्कंठा उनकी बढ़ती रहती है, दो तीन महीने पहले से ही उनकी उत्कंठा बढ़ती रहती है। तो कहते हैं कि वो उसके वीरह का जो ताप है उससे वृंदावन का तापमान बढ़ता है। जो पहले बारिश से पहले जो तापमान यहाँ पे तापमान और जगह पे तापमान बढ़ता है वो किसी कारण बढ़ता होगा, जो भी गया परिवलन, पृथ्वी का जो एंगल चेंज होता है, जो भी है उत्तरायण दक्षिणायन की वजह से। लेकिन वृंदावन में क्यों होता है, क्योंकि गोपियों का विरह भाव कृष्ण के प्रति बढ़ता है, तो वो ताप ही बाहर उपस्थित हो जाता है। और गौरव प्रभु भी एक बार बता रहे थे कि एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज उनके साथ जगन्नाथपुरी में घूम रहे थे, तो गर्मी का सीजन था, तो प्रभु जी ने विंडोज़ का पेन जो है वो ऊपर करने का प्रयास कर रहे थे, तो महाराज ने उनको रोका और महाराज ने कहा ये नहीं, ऐसा मत करो, ये गर्म हवा नहीं है, ये जगन्नाथ जी का उच्छ्वास है। तो जो सच में व्रजवासी हैं वही जान सकते हैं, हम तो केवल सुन सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं। तो और उसके बाद वो बहुत सारे आंसुएं बहाती हैं गोपियाँ हैं वो उत्कंठा में कि, और वो उनकी आंसुओं को देखकर और आंसू वो तापमान की वजह से वो आंसू क्या हो जाते हैं, उनके बादल बन जाते हैं, और उनका गोपियों का दुख देखकर मेघ रोना चालू कर देते हैं, तो बरसात होती है। तो ये श्रावण में जो बरसात है वो जो मेघ हैं, बादल हैं, वो गोपियों का दुख उनसे झेला नहीं जाता, तो वो खुद रोना चालू कर देते हैं। तो सारी गोपियाँ उत्कंठित हैं, उत्कंठा से राह देख रही हैं अपने बंधुओं का, उनके उनके जो भाई हैं वो आकर उनका लेके जाते हैं। तो राधा रानी भी सोच रही हैं, श्रावण का पहला दिन हो जाता है, दूसरा दिन हो जाता है, तीसरा दिन हो जाता है, अभी तक श्रीदामा आए नहीं। तो श्रीदामा एकदम 10, 12, 13 दिन होने के बाद अचानक से उनको दिखते हैं, वो चंद्रशालिका पे रोज जाके देखती है राधा रानी की कब आएंगे कब आएंगे, फिर अचानक उनसे दिखाई देते हैं उनके भैया आ गए करके, और फिर श्रीदामा जी आ जाते हैं, और वो उनको देख के ही राधा रानी फूट फूट कर रोने लगती हैं, श्रीदामा भी रोने लगते हैं, और राधा रानी कहते हैं कि भैया क्या आप सब मुझे भूल गए, मेरे पिताजी वृषभानु महाराज, कीर्तिदा और आप, मेरी छोटी बहन अनंग मंजरी, सब क्या मुझे भूल गए? तो वो कहते कि नहीं नहीं, असल में मैं वो अपने साथ बहुत सारे उपहार लेके आए होते हैं, 10,000 गायें और बहुत सारे सुगंधित द्रव्य और अनेक अनेक व्यंजन, तो वो थोड़ा सा ब्राइब क्या बोलते हैं वो जटिला कुटिला को संतुष्ट करने के लिए। तो जटिला को जाके बोलते हैं कि कृपया आप राधा रानी को हमारे साथ छोड़ दीजिए, तो जटिला बोलते हैं नहीं नहीं, इतने सारे काम है घर पे, कैसे छोड़ सकती हूँ। तो श्रीदामा कहते हैं देखो मैं आपके लिए कितना उपहार लाया हूँ करके, तो उपहार देख के ही वो चकित हो जाती हैं जटिला, और कहते हैं हाँ राधा रानी तुम जाओ, वो गाय को इधर आने दो। और उपहार वो ये रूम में रख देना। तो इस प्रकार राधा रानी वापस
बरसाना लौट आ जाती हैं और सारी सखियां वो भी उत्कंठित हैं क्योंकि वो पहले ही बरसाना पहुंच चुकी हैं। वो सारी सारा बंदोबस्त कर देती हैं झूलन का। तो अनेक अनेक प्रकार से वर्णन है उसका। तो हम तो ये जो झूलन है तो उसका जो हिंडोला है, जो झूला है, वो सुवर्ण की रस्सियों से उसको रचाया गया है। और सब तरीके से वृंदा देवी और जो वन देवताएं हैं वो उस अनेक अनेक प्रकार के पंछी साउंड इफेक्ट के लिए, कोयल और मयूर और भ्रमर उनका नियोजन करते हैं, कौन कभी किसकी एंट्री कभी है और अनेक प्रकार के सुगंध से वातावरण सुगंधित है। और आकाश में देवतागण पहले ही आकर उपस्थित हैं और पहले ही जोर जोर से बाजाएं बजा रहे हैं। तो वहाँ पे कवि कर्णपुरा कहते हैं कि ये बाजा क्यों बजा रहे इतना जल्दी, अभी तो शो चालू भी नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि जिनकी उत्कंठा है वो समय की प्रतीक्षा नहीं करते तो कह रहे इसलिए देवतागण इतने इतके उत्कंठित हैं वो लीला देखने के लिए कि पहले ही उन्होंने बजाना चालू कर दिया। तो और उसके पश्चात सारी गोपियां आ जाती हैं और अपने साथ अनेक अनेक सिंदूर की गेंदे, अनेक कूपियाँ, अबीर, गुलाल, कुमकुम सब लेकर आती हैं और सुवर्णमयी पिचकारियाँ लेके आती हैं। तो उसके पश्चात जब राधा रानी स्वयं आ जाती हैं तो राधा रानी स्वयं मेघ मल्लार राग गाना चालू करती हैं और वो सुनकर सारी सखियां भी मेघ मल्लार में एक सुर में गाना चालू करती हैं। और मेघ मल्लार से कौन आकर्षित होता है? ऊपर के मेघ तो आकर्षित होते हैं लेकिन मेघ जैसे दिखने वाले भगवान कृष्ण भी आकर्षित हो जाते हैं जिनके लिए वो तो बादल आ जाते हैं आकाश में और वृष्टि करना चालू करते हैं और भगवान कृष्ण भी आते हैं जो प्रेम की वृष्टि करना चालू करते हैं। और उनके साथ राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण विराजमान होते हैं। और जब भी वो जो दोला कर रहे हैं तो सारी गोपियों को लगता है कि हमारे सामने से ऐसा दोला हो रहा है, हमारे सम्मुख ही दोला हो रहा है। साइड से भी देख रहे हैं तो उनको लग रहा है हमारे सम्मुख से ही दोला हो रहा है। तो जैसे हम देखते हैं भागवतम में हर गोप को लग रहा है कि मैं सबसे, जब ये वन भोजन हो रहा है तो हर गोप को लग रहा है कि मैं सबसे अंदर वाले सर्कल में बैठा हूँ और कृष्ण मेरे ही सम्मुख है, ऐसा हर गोप को लगता है। वैसे हर गोपी को लग रहा है कि वो झूला जो है उनके ही डायरेक्शन में, उनके ही दिशा में झूल रहा है। तो भगवान जो है वो इतने भगवान की इतनी अचिंत्य शक्ति है कि हर हर एक के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं भगवान। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ये अनंत गुण क्यों है? क्योंकि अनंत जीव है, अनंत जीव को एक विशेष रूप में भगवान आकर्षित करना चाहते हैं। मतलब एक एक हम में से किसी भी एक को आकर्षित करने के लिए भगवान एक विशेष गुण दिखाते हैं जो आप, वो आप और भगवान में स्पेशल है। तो इस प्रकार भगवान हर जीव के साथ आदान प्रदान करते हैं। और उसके पश्चात जब भी हाँ बादल आते हैं आकाश में तो वो गरजने लगते हैं और बिजली कड़कने लगती है तो राधा रानी भगवान को आलिंगन दे देती हैं भय के कारण। और भगवान कृष्ण बादल की तरफ देखते हैं और कहते हैं थैंक यू आपके वजह से मुझे सौभाग्य मिला राधा रानी के स्पर्श का। तो एक राधा शब्द का अर्थ राधा उपनिषद में दिया है, एक अर्थ दिया है कि जो कृष्ण की आराधना करती हैं इसलिए उनका नाम राधा है, और दूसरा अर्थ दिया है कि जिनकी आराधना कृष्ण करते हैं हर वक्त इसलिए उनका नाम राधा है। तो इस प्रकार से सुसारी गोपियों का मुख्य उद्देश्य है कि राधा रानी और कृष्ण को रंग में रंगे हुए देखना, वही उनके जीवन का लक्ष्य है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे जीव, मतलब हम सब, एक कथा में कहते हैं प्रभुपाद जी कि हम सब राधा रानी के अंश होने के कारण, हमने सुना होगा हम भगवान के अंश हैं, कृष्ण के अंश हैं, यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं हम राधा रानी के अंश हैं। तो राधा रानी के अंश होने के कारण हम सबका कर्तव्य है कि कैसे हम राधा कृष्ण को संतुष्ट रखें। जैसे वो गोपियाँ राधा कृष्ण को संतुष्ट देखकर ही सुखी हैं। तो उसको उदाहरण देते हैं कि कोई अगर राधा रानी की तुलना की है एक लता से, कृष्ण की तुलना की है तमाल वृक्ष से, और जो गोपियां हैं, सखियां हैं, मंजरियां हैं, उनकी तुलना की है अनेक छोटे छोटे पुष्प पत्ते और कलियों से, उनकी तुलना की है। तो कोई कलियों को और पुष्पों को अलग से पानी नहीं देता। अगर आप लता को ही पानी देते हो तो अपने आप कलियों को उससे अधिक सुख प्राप्त होता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार हम सबका कर्तव्य प्रभुपाद जी बताते हैं, स्पष्ट बताते हैं उसमें कि कैसे हम अभी हम दुर्गा देवी की चाकरी कर रहे हैं। भवोद भव क्लेश कशाशता हता, हमको पीछे से चाबुक के वार पड़ रहे हैं, तो इसलिए कैसे चालू होते हो, भवोद भव क्लेश कशाशता हता परिभ्रमण इंद्रिय कापता अंतरे नियम में माधव में मनोहयस तदंग्री शंको दृढ़ भक्ति बंधने। सो देयरफॉर सॉरी, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि हमारा मन, हम तो चाबुक के वार खा रहे हैं दुर्गा देवी से, तो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भक्ति के बंधन में, अभी तो माया के बंधन में है, आपका बंधन हमको चाहिए। जैसे बंधन हमेशा दूषण नहीं होता, कभी कभी भूषण भी होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति आता है उसको सत्कार के रूप में सर पर बांध देते हैं वस्त्र, तो वो भी बंधन है, लेकिन वो अच्छा बंधन है। या एक उदाहरण और, एक आचार्य वल्लभाचार्य उदाहरण देते हैं, कभी आप पहाड़ चढ़ रहे हो तो रस्सी को आपको बांधना पड़ता है, और फिर आप पहाड़ चढ़ते हो, तो वो बंधन तो आपको चाहिए, वो बंधन अगर छूटेगा तो तकलीफ मुश्किल में पड़ जाएंगे हम। तो बिल्कुल इसी प्रकार कृष्ण के साथ का जो हम हमारा बंधन है वो हमको चाहिए, हाँ, तभी जाके माया का बंधन छूट सकता है। तो ये जो ये इसलिए हमको क्या आदत लगानी पड़ेगी कि जो जो कुछ अच्छा प्राप्त होता है वो भगवान को समर्पण करें। हमारे जीवन में जो जो कुछ अच्छा प्राप्त होता है, जो जो हमको प्राप्त होता है वो भगवान को समर्पण करें। ये अगर हमको आदत पड़ेगी तो फिर हम जो सबसे अच्छा क्या है जो भगवान को अच्छा लगता है, राधा रानी सबसे अच्छी है जो भगवान को अच्छा लगता है। तो इसलिए सारी गोपियाँ क्या करती हैं, राधा रानी को ही कृष्ण के समीप भेज देती हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा संतुष्ट भगवान को करती हैं। तो अगर हम ये आदत बनाएं कि जो सबसे अच्छी वस्तु है वो भगवान को समर्पण करने की, तो इससे हम काफ़ी सीख सकते हैं। तो अंत में एक दो मिनट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जो ये विग्रहों की पूजा सेवा अर्चा कर रहे हैं, ये साक्षात भगवान की ही सेवा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जो अभी साक्षात भगवान को नहीं देख पाते हैं, तो इसके लिए भगवान दो बंदोबस्त करते हैं। एक तो गुरु का बंदोबस्त करते हैं ताकि हम गुरु से सुने, और विग्रह के रूप में स्वयं उपस्थित हो जाते हैं और नाम के रूप में भी उपस्थित होते हैं। जीवेर साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूप है। जब तक हमको भगवान का साक्षात उपदेश नहीं मिलता, तब तक गुरु के रूप में ही कृष्ण साक्षात हमको उपदेश करते हैं। और जब तक हम और भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने ना, तब तक भगवान बड़ी कृपा से स्वयं विग्रह के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। और मान लो प्रेमांजन प्राप्त करने के बाद भी भगवान अर्चाओं की के रूप में उपस्थित हैं ही, जैसे हम देखते हैं कि रूप सनातन गोस्वामी सब प्रेम चक्षु धारी हैं, लेकिन फिर भी विग्रहों की उपासना कर रहे हैं। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि सारे धर्म में अर्चा की उपासना है। जो कह रहे हैं कि जो कोई अतिवादी उग्रवादी विचार के लोग हैं, जो मूर्ति भंजक हैं, उनके भी धर्म में यही कहा है कि एक रूप में कि अर्चा की उपासना करने को बोला है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि आप अर्चा की उपासना बिना रह नहीं सकते। अगर आप मन में किसी भगवान के बारे में सोच भी रहे हो तो वो भगवान की मनोमयी मूर्ति की उपासना आप कर रहे हो। क्योंकि भगवान तो मणिमयी मूर्ति, मनोमयी, शिलामयी, दारुमयी, ऐसे विविध रूप में उपस्थित होते हैं। तो ये उसको हम छोड़ नहीं सकते, चाहे हम कितना भी उसका निषेध करें, फिर भी हम कोई भी धर्म असल में अर्चा के पूजा को नहीं छोड़ सकता। वो उनके कम बुद्धिमत्ता का प्रतीक है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि अर्चा की उपासना नहीं करनी चाहिए, असल में वो भी वही कर रहे हैं। तो हमको किस प्रकार से उपासना करनी चाहिए, तो दो दो एक क्या बोलते हैं, दो उसके साइड हैं बोल सकते हैं, दो दो कक्षाएं हैं। न्यूनतम कक्षा में क्या है कि भगवान को साक्षात देखते देखते हुए भी हम भगवान को नहीं दे सकते हैं, जैसे दुर्योधन है या शिशुपाल है, तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों के लिए नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, हाँ ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहम्। अच्छा तुमको लगता है मैं साधारण ग्वाला हूँ, ठीक है मैं साधारण ग्वाला हूँ। अच्छा तुमको लगता है कि मैं पत्थर हूँ, ठीक है मैं पत्थर हूँ। तो इस प्रकार से तो दुर्योधन साक्षात देखकर भी पहचान नहीं पाया। और दूसरा है एकदम भक्ति का उच्चतम स्तर, जहाँ पे हाँ क्या कहते हैं वो इष्ट देवते स्फूर्ति, हाँ स्थावर जंगम देखी ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देवते स्फूर्ति। जैसे प्रहलाद महाराज को बोला कि कहाँ पे है भगवान, यहाँ पे है, यहाँ पे है, हाँ कहीं पे भी है, अब इशारा करो वहाँ पे भगवान है हमारे। और फिर जिस स्तंभ की तरफ इशारा किया हिरण्यकश्यपु ने, तो कहते हैं कि इसमें है, तो श्रीधर स्वामी कहते हैं उत्तर देने से पहले ही प्रहलाद महाराज सर पर कृतांजलि करके उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो वो देखकर हिरण्यकश्यपु और भी डर जाता है, मैं पूछने से पहले प्रणाम कर रहा है वो साइड में देखकर, तो वो किसको प्रणाम कर रहा है, हाँ मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो प्रहलाद महाराज एकदम शांति से कहते हैं मुझे दिख रहा है। इतने तो इससे ही उसकी हाँ आधे जो प्राण है वो निकल जाते हैं हिरण्यकश्यपु के, कह रहे मुझे कैसे नहीं दिख रहे, इसको कैसे दिख रहा है। तो वो है सर्वोत्तम स्तर कि जहाँ पे भगवान की अनुभूति स्थावर जंगम देखी न देखी तारमूर्ति, जैसे गोपियों को कुछ भी काले रंग का नजर आए उनको कृष्ण की स्फूर्ति हो जाती है, जैसे गौरांग महाप्रभु को कुछ भी नदी दिखी तो ये यमुना है कहते हैं, कुछ भी पर्वत दिखे तो कहते हैं ये गोवर्धन है, कुछ भी वन दिखे तो कहते हैं ये वृंदावन है। तो उसके बीच में हमारी चेतना हम रख सकते हैं कि दोनों के बीच में, मतलब कम से कम हम भगवान की सेवा विग्रह के रूप में हम कर सकते हैं और उनको समझने की का प्रयास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज ये हम और अगले चार दिन हम ये लीला संपन्न होते हुए देख रहे हैं और उसमें प्रभुपाद जी की कृपा से हमको उसमें भाग लेने का भी अवसर मिल रहा है कि जो ये ट्रेनिंग हमको मिल रहा है आगे जो हमारा भविष्य है उसका। तो जो ट्रेनिंग में जितना अच्छा करें उतना मेन मैच में अच्छा हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही प्रार्थना के साथ हम बड़े कृतज्ञता के साथ श्रील प्रभुपाद जी के प्रति और पूर्व आचार्यों के प्रति कि उन्होंने ये संधि अवसर उपस्थित किया है, क्योंकि उनके आग्रह के कारण विग्रह उपस्थित है, उनके आग्रह के कारण विग्रह उपस्थित है। तो क्योंकि उनका हमारे प्रति अनुग्रह है। तो उसी को हम स्मरण करके ये लीला का हम हमारे स्तर पर आस्वादन या महिमा का गुणगान करके स्मरण करने का प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री वृंदावन धाम की जय, श्री झूलन लीला की जय, श्री राधा बन बिहारी भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हिदाय गौर प्रेमानंदे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
तो ये माधव गौर प्रभु का हम धन्यवाद देते बहुत ही मधुर कथा के लिए, तीन बार हरी वो हरी वो हरी वो, तो ऐसी कथा होती रहेगी। तो कल यहाँ पर शाम को प्रवचन करेंगे श्रीमान रूप रघुनाथ प्रभु। तो अभी सब भक्तों के लिए नीचे जाते वक्त हलवा प्रसाद की व्यवस्था कीजिए, सब लोग प्रसाद लेके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।